आज अंतर्राष्ट्रीय मुक्त दिवस आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुलकर। आज मोबाइल वाणी के मंच पर हमारे साथ नागपुर शहर से विविध मंचों पर सम्मानित भारतनाट्यम कथक एवं ओडिशा नृत्यांगना डॉक्टर प्रियंका सिंह जी आमंत्रित है। नमस्ते दीदी।
बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इंटरनेशनल डांस डे के दिन आपने मुझे चुना, आपने मेरा इंटरव्यू लेने का सोचा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है और इसे आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है?
सर जी, ऐसा है कि आजकल का समय ऐसा हो गया है कि किसी न किसी चीज को एक महत्व देने के लिए लोग एक दिवस चुनते हैं। लोग एक दिन तय करते हैं कि इस दिन हम ये दिन को मनाएंगे, इस दिन हम ये डे को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी दिन सेलिब्रेशन का तो एक दिन जरूर मनाना चाहिए, लेकिन ये हर दिन सेलिब्रेट होना चाहिए। इसको हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि जो इंसान नृत्य और संगीत से जुड़ा रहता है वो कभी गुस्सा नहीं होता, वो हमेशा प्यार बांटता है, वो लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता और वो हमेशा चाहता है कि वो खुशियां बांटे।
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर संगीत और नृत्य में क्या संबंध है?
क्या बोले सर आपने?
संगीत और नृत्य में क्या संबंध है?
संगीत और नृत्य में जो संबंध है वो वही इंसान जान सकता है जिसने कभी संगीत से अपना जुड़ाव रखा हो, जिसने कभी शास्त्रीय संगीत सुना हो, शास्त्रीय नृत्य किया हो, जो कभी रेडियो से जुड़ा हो। रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम है हर दिल को जोड़ने के लिए, हर एक को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। और संगीत से जुड़ा हुआ इंसान और नृत्य से जुड़ा हुआ इंसान, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि नृत्य और संगीत दोनों एक साथ चलते हैं। ये गाड़ी के चार पहिए में से दो हैं और जो दो पहिए बाकी हैं वो है अपना दिल और अपना मन और अपना मस्तिष्क, कि हम ये बोले, हमारा दिल ये बोले कि हमको ये करना है और अपना मस्तिष्क ये गवाही दे कि हाँ ये चीज हमने करनी चाहिए। और जो बोला जाए, जो दिल बोले और जो सोचा जाए उसे अवश्य करना चाहिए।
आज हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मना रहे और जब बात अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आती है तो हम अपनी भारतीय संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे आज कि भारतीय संस्कृति में कितने प्रकार के नृत्य होते हैं?
8 प्रकार की शैलियां होती हैं और आजकल शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस लोग पसंद नहीं करते, लोग छोड़ चुके हैं। लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत मोनोटोनस होता है, इसमें मजा नहीं होता, क्योंकि उन्हें फिल्मी डांस और जो नृत्य हम पिक्चरों में देखते हैं, चित्रपट में देखते हैं, वो उन्हें बहुत मजा आता है करने में क्योंकि वो तुरंत सीखते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है, उसके साथ जुड़ा हुआ इंसान बहुत आगे तक बढ़ता है, उसे अपने ऊपर भरोसा भी होता है। और ये जो शैलियां हैं ये आपको हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ती हैं, मन को जोड़ती हैं, भावनाओं को जोड़ती हैं और एक दूसरे के साथ में हम छल कपट करने के बगैर, हम उसे किए बगैर हम प्यार से जुड़ना पसंद करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसलिए शायद ये शैलियां बनी हैं ताकि हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकें और ये इंडियन एथिक्स को एक दूसरे तक पहुंचा सकें।
नृत्य के क्षेत्र में आपका काफी लंबा अनुभव रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कितने वर्षों से नृत्य के क्षेत्र में प्रवेश किया?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मैंने 3.5 साल की उम्र से शास्त्रीय नृत्य की तरफ मेरे मम्मी पापा ने मेरा झुकाव डाला। मैंने 3-3.5 साल की उम्र से भरतनाट्यम कथक और ओडिसी सीखा है और मेरे घर में मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो सभी लोगों को, हमारे पेरेंट्स लोगों ने ये चीजों को सिखाया है क्योंकि उनका मानना है कि जिंदगी में पढ़ाई के साथ साथ हॉबी क्लासेस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये आपको कुछ अच्छा सिखाती हैं, आप कुछ अच्छा कर पाते हैं और बहुत डिफरेंस होता है आप में और उन लोगों में जो कुछ नहीं सीखे हुए हैं, सिर्फ पढ़ के आगे आए हैं, और कुछ लोग जो पढ़ने के साथ में ये सारी चीजें सीखते हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर होने के बावजूद, आर्मी ऑफिसर्स होने के बावजूद, मुझे इस तरह के चीजों में उन्होंने मेरा झुकाव डाला और मैं आज इस जगह तक पहुंच पाई कि मैंने हेमा मालिनी जी, वहीदा रहमान जी, सुधा चंद्रन जी और बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों से मैंने अवार्ड्स लिए, और मैं इस चीज के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
दीदी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपका आगे का क्या लक्ष्य है?
मेरा आगे का एक लक्ष्य है कि मैंने एक सावनेर के पास पहाड़ी के ऊपर, एक छोटा सा अपना केलवत के पास एक पहाड़ी है, वहां पे मैंने एक छोटा सा अपना इंस्टीट्यूट खोला है जिसे हेमा मालिनी जी ऑलरेडी आके इनॉग्रेट कर चुकी हैं, लेकिन अभी वहां तक लोगों को पहुंचाया नहीं गया है, अभी तक लोगों में जानकारी नहीं है। तो इस जगह को मैं क्लासिकल डांस, फोक डांस, सिंगिंग, एडवेंचर कैंप, समर कैंप की तरफ से मैं बच्चों को वहां तक लेकर जाऊंगी। मैं अलग अलग जगहों तक जा जाके ट्राइबल बच्चों को, शहर के बच्चों को बताऊंगी कि ये सब चीजें कितनी जरूरी हैं, घर से निकलना कितना जरूरी है, और ये चीज जो मैं बता रही हूँ, पेरेंट्स बहुत जरूरी हैं इस चीज में बच्चों को आगे बढ़ाना, और स्पेशली एक माँ ही अपने बच्चों को आकार देती है, और मैं एक खुशनसीब बेटी हूँ जिसे मेरी मम्मी ने इतना सुंदर आकार दिया कि आज मैं एक जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे लोग बहुत अदब से, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं।
दीदी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है,
हाँ जी,
और संपूर्ण विश्व में
जी,
आज का दिवस नृत्य के लिए समर्पित है, और भारत में भी
जी,
आपने जैसे बताया 8 शैली में नृत्य होता है, इसके बावजूद क्षेत्रीय शैलियां भी होती है, जैसे अहिरी शैली, गोंडी शैली, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्षेत्रीय शैली है और शास्त्रीय शैली में क्या अंतर है?
सर, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन।
जो ग्रामीण क्षेत्र में जो नृत्य होता है, आदिवासी नृत्य, आयुर्वेद नृत्य और जो शास्त्रीय संगीत, इसमें क्या अंतर होता है?
सर देखिए, मैंने जो देखा है और जो मैंने किया है, जो फोक डांसेस होते हैं, जो गांव के डांसेस, ट्राइबल डांसेस होते हैं, उसमें उनके पास में बहुत ज्यादा कुछ बजाने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो घुंघरुओं से, वो मांदर से, वो ढोल से, वो सीटियों से, वो पत्तों की आवाज से, वो इतना बढ़िया सब कुछ करते हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि हम कब रात हुई और कब सुबह हुआ पता ही नहीं चलता है। तो ये दो शैलियां अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों में एक अपना एक अलग स्वभाव है, एक अलग अलग अपना भाव है।
दीदी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे आज इस अवसर पर, क्योंकि नृत्य दिवस है और आप भारतनाट्यम और कथक में पारंगत है, तो भारतनाट्यम और कथक में क्या समानता है और क्या अंतर है?
जी सर, भरतनाट्यम और कथक शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं, दोनों में बहुत खूबसूरती है, और दोनों में कुछ एक ऐसी बात है जो जब कोई इंसान करता है तो ऑडियंस पूरा मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन फर्क भी है। भरतनाट्यम में हम झुक के परफॉर्मेंस करते हैं, हमें पूरा नृत्य झुक के करना पड़ता है, अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, आंखों का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक नाट्य है जिसमें हम एक ड्रामा पैटर्न को फॉलो करते हैं, और कथक में वही नृत्य को हम खड़े होकर करते हैं, हम उसमें सीधे रहते हैं, हमारा हाथों का, आंख का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, और हमारे ड्रेस का भी अंतर रहता है, जो हम पहनते हैं उसमें भी बहुत फर्क रहता है। पर दोनों डांसेस जब कोई इंसान करता है या सीखता है तो दोनों डांसेस में एक अपनापन होता है, और बहुत बहुत ही अलग सी बात होती है, जो जब करता है वही जान पाता है कि वो है क्या।
दीदी
जी,
हम आज इस अवसर पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने भरतनाट्यम और कथक में अंतर और फर्क बताया, ओडिशा नृत्य किस तरह का होता है?
जी सर,
ओडिसी नृत्य किस तरह का होता है?
ओडिसी नृत्य एक बहुत अलग किस्म का नृत्य है, जिसमें आप सबसे ज्यादा अपने कमर के हिस्से को घुमाकर करते हैं। वो बहुत ही अलग किस्म का नृत्य है, अक्सर बहुत सारे लोग उसको ऑप्ट नहीं करते हैं लोग, क्योंकि भरतनाट्यम कथक में सीख के बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और कथक एक ऐसा नृत्य है जिसे कम लोग करते हैं, लेकिन वो जो कर पाता है, वो अपने फिगर को, अपने खूबसूरती को, अपने पोस्चर को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकता है। द्रोणा गांगुली, अपने जो क्रिकेटर हैं सौरभ गांगुली की वाइफ, वो इसमें निपुणता हासिल कर चुकी हैं। उनका बहुत बड़ा एसोसिएशन है और उसके भी वहाँ, उनके भी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत महिलाएं जाते हैं, सीखते हैं, और मैं उनके ही डिसाइपल्स के यहाँ से सीख चुकी हूँ।
दीदी जी, जैसा कि आपने बताया अभी, नृत्य के क्षेत्र में एक आप नवाचार करने के लिए जा रही महाराष्ट्र राज्य के सावनेर तालुका में गहलोत के पास
जी,
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शासन ने भी शिक्षा के क्षेत्र में इस शास्त्रीय संगीत को जोड़ना चाहिए, प्राइमरी
जोड़ना चाहिए। शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के बगैर हम अधूरे हैं, अधूरे थे और अधूरे ही रहेंगे। अगर ये नहीं सिखाया गया तो हमारा जो मूल्य कल्चर है, हमारा जो स्वभाव है, इंडियन मेंटालिटी, हम जो भारतीय मूलता को लेकर चलते हैं, हम भारतीय ही नहीं कहलाएंगे अगर हम इन चीजों से परे रहेंगे। इसलिए जो मेरी अकेडमी है, प्रियंका स्ट्रिप्स एंटोज अकेडमी, प्रियंका इंद्रप्रिय नित्य ग्राम, ये यही चीजों को प्रमोट करती आई है, प्रमोट करती रहेगी जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपना नृत्य और अपना ये कल्चर, अपना गायन कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं इसी से जीवित हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि आपने मोबाइल यानी से मोबाइल यानी से रूबरू होकर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर महत्वपूर्ण बातों पर जी अपने विचार व्यक्त किए।
क्योंकि आज सर आपका,
क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, तो हम मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए भी बताना चाहेंगे कि आप है डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, जिन्हें विविध मंचों से सम्मानित किया गया है, और महाराष्ट्र ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश में भी इन्होंने अपनी कला की सुंदर प्रस्तुति दी है।
यस सर,
बहुत बहुत धन्यवाद
जी सर। और ये सब चीजों में मैं अपनी माँ को सबसे बड़ा दर्जा देती हूँ कि उन्होंने मुझे डांट डांट कर सिखाया, क्योंकि शुरुआत में मैं बिल्कुल नहीं सीखना चाहती थी, क्योंकि तीन साढ़े तीन चार साल का बच्चा ये सबसे बहुत दूर रहता है, उसे तो अपनी मस्ती करनी अच्छी लगती है। मगर आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ये इस चीज का एहसास होता है कि मेरी माँ ने मुझे क्या दे दिया, वो अनजाने में मैंने अपनी माँ से क्या ले लिया, और मैं आज जिस जगह तक पहुंची हूँ, जब मुझे, मुझसे भी उम्रदार लोग, मुझसे भी बड़े लोग जब मुझे नमस्कार करते हैं, और मुझे जब अवार्ड्स देते हैं, और मुझे शाबाशी देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं अपनी मम्मी को सबसे पहला थैंक यू बोलती हूँ। तो नटराज को नमन है सर आज के दिन, और आपको बहुत 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 धन्यवाद कि आज के इस अवसर पे आपने मेरा इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर
जी, आपका भी धन्यवाद।
थैंक यू।